स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 24 दिसंबर और दिन मंगलवार। एनपीआर अपडेट करने को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी।
इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है। जो आप कहोगे वही सही है, क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है।
लेकिन विपक्ष ने कहा ये दरअसल एनसीआर लागू करने का है पहला कदम। सीपीएम के सीताराम येचुरी,
दिस एनपीआर एक्सरसाइज इज द प्रीलूड टू द फॉर्मिंग द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस और द एनआरसी।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी। और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरपी और एनआरसी में कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एनआरपी यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दी थी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एनपीआर हर 10 साल में अपडेट होता है। उन्होंने बताया कि एनपीआर में जनगणना का काम अगले साल अप्रैल से ऐप के जरिए किया जाएगा। इस बीच विवादित नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। सबसे बड़ा प्रदर्शन कोलकाता में हुआ। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं ने क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए साथ मिलकर काम करने का वादा किया है। क्षेत्र में इस बात को लेकर डर बना हुआ है कि उत्तर कोरिया लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। चीन में एक प्रेस वार्ता के दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि सभी तीनों देश बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उत्तर कोरिया लगातार एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर रहा है। स्थिति को लेकर हम तीनों देश चिंतित हैं। हम तीनों देश चाहते हैं कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच शांति प्रक्रिया में तेजी आए। अगर उत्तर कोरिया इससे ज्यादा आक्रामक रुख दिखाता है तो हमें भी अपनी रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। ये थे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के शब्द। सीरिया से आ रही खबरों के मुताबिक विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब प्रांत में ताज़ा हमलों में 5 बच्चों समेत कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। कार्यकर्ताओं के मुताबिक प्रांत के दक्षिणी हिस्से में हवाई हमले हुए थे, जिसकी चपेट में एक स्कूल भी आ गया। राहत और बचाव कर्मचारियों के मुताबिक इन हमलों की वजह से 1,00,000 लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए हैं। जब हम भागे तब बमबारी हो रही थी। खुदा की रहमत के सिवा हमारे पास कुछ और नहीं है। हम बेघर हैं, किसी ने हमें कुछ नहीं दिया। हम अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे हैं। मेरे परिवार में 5 विधवाएं हैं। जिस रात हम यहाँ आए हम जमीन पर सोए और यहाँ हमारे पास न कपड़े हैं और न ओढ़ने के लिए कम्बल। ये थे इदलिब से अपना घर छोड़कर आई एक महिला के शब्द। आप सुन रही हैं बीबीसी समाचार। जापान में जन्म की दर रिकॉर्ड स्तर पर कम हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जापान में इस साल करीब 8,60,000 बच्चों का जन्म हुआ, यानी पिछले 100 साल में वहां सबसे कम बच्चे पैदा हुए हैं। इसी के साथ जापान की आबादी भी तेजी से कम हो रही है। 2019 में जितने बच्चों ने जन्म लिया उससे 5,00,000 ज्यादा लोगों की मौत हुई। सरकार का कहना है कि जापान में युवा महिलाएं कम है, इस वजह से जन्म की दर कम हो गई है। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी BMW ने बताया कि अमेरिका में वित्तीय नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन उनकी जांच कर रहा है। कंपनी के मुताबिक वो जांच में पूरा सहयोग कर रही है। हालांकि BMW ने इस बारे में और जानकारी नहीं दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कंपनी पर आरोप हैं कि उसने अपनी बिक्री के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया ताकि वो निवेशकों के सामने खुद को ज़्यादा फायदेमंद दिखा सके। ईरान के मीडिया के मुताबिक पिछले महीने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मारे गए एक शख्स के परिजनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि पुलिस को शक है कि वो काउंटर रिवॉल्यूशनरियों के संपर्क में हैं। प्रदर्शनों में मारे गए लोगों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है दिसंबर की 24 तारीख और दिन है आज मंगलवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से। केंद्रीय कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले किए, जिनमें एक NPR या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए मंजूरी दी गई। इसके लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी।
इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है, जो आप कहोगे वही सही है, क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है। ये सभी राज्यों ने स्वीकार किया है, सभी राज्यों ने इसके नोटिफिकेशन निकाले हैं और सभी राज्यों में इसके कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। सो नथिंग हैज बीन न्यू। हर 10 साल के बाद ये होगा। 2010 में पहली दफा हुआ, UPA ने शुरू किया और इसलिए मनमोहन जी ने उसके कार्ड बांटे, तो एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार होगा। जो भी भारत में रहता है उसकी गणना इसमें होगी।
ये थे प्रकाश जावड़ेकर। और प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि इससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।
इससे क्या होगा, 3 फायदे होंगे। इसका फायदा ये होगा कि टारगेटेड बेनिफिट्स जो होते हैं, समझो आयुष्मान है, उज्ज्वला है, आवास है, सौभाग्य है, ऐसे सभी स्कीम के लिए सही पहचान होना, क्योंकि जनसंख्या में भी, जनगणना में भी और पॉपुलेशन रजिस्ट्री में आवश्यक सारे डिटेल्स आते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन है, और इसके कारण वो सभी और सही बेनिफिशियरीज, सभी और सही लाभार्थियों तक ये बेनिफिट्स पहुंचे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है।
ये थे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन विपक्ष सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। CPM महासचिव सीताराम येचुरी ने का कहना था,
दिस NPR एक्सरसाइज इज द प्रीलूड टू द फॉर्मिंग द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस और द NRC। इन दिसंबर 2003 then BJP government led by Mr. Vajpayee.
सीताराम ये चोरी कह रहे थे कि दरअसल ये जो NPR है वो NRC के लिए उठाया जाने वाला पहला कदम है, और उन्होंने ये भी कहा कि सरकारें इसका विरोध करें, खासकर जो गैर बीजेपी सरकारें हैं वो इसका विरोध करें। उन्होंने ये भी कहा कि केरल और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसने NPR पर जो काम चल रहा था उसको रोक दिया है। और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार नीना व्यास जी टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। नीना जी, ये बताएं कि ये वक्त जबकि पूरे देश भर में NRC और CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में मोदी कैबिनेट का ये फैसला कि वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने को मंजूरी दे दी गई है, कैसे देखती हैं आप इस फैसले को?
ये देखिए, ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कई साल पहले भी हुआ था, इसको अब कह रहे हैं कि अपडेट करेंगे, मगर जो नई बात है और जो खतरनाक बात ये हो रही है कि एक ये एक पॉपुलेशन की अलग बात है कि पॉपुलेशन रजिस्टर, मगर आप कह रहे हैं कि सिटीजनशिप इस आधार पे होगी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो NRC की बात चल रही है, जो CAA के तहत में NRC होगी उसकी बात जो चल रही है वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर आपको, हम लोग सबको, हम इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, किसी के पास पासपोर्ट है, आधार है, पैन है, ये कार्ड वोटिंग राइट्स हैं, इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इतने सालों से, वोटिंग कार्ड सरकारी जो दिया गया है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आप दोबारा प्रमाण लाइए कि आप यहाँ के नागरिक है कि नहीं, ये बड़ी खतरनाक बात है। और देखिए, जो अब इन प्रोटेस्ट के बाद जैसे यूपी पुलिस खासतौर जो रवैया रहा है उनका, तो इसमें तो सीधे सीधे पता लग रहा है कि BJP की आइडियोलॉजी का पार्ट है हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, RSS का पार्ट है, तो इसमें वो सीधा सीधा जो उन्होंने अपना निशाना मुसलमानों का ताना हुआ है सीधा।
लेकिन नीना जी, BJP तो कह रही है कि NPR UPA के वक्त में आई थी, मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो हम तो सिर्फ उसी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हम नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
नहीं, NPR की अलग बात है, वो मैंने कहा ना, वो तो पॉपुलेशन हो गया, कोई भी पॉपुलेशन, उसमें आपके रेफ्यूजीज भी हैं और बाकी जो भी यहाँ जनता यहाँ रह रही है वो आप रजिस्टर्ड बना रहे हैं, वो तो अलग बात है। मगर जो सिटीजनशिप की बात हो रही है कि नागरिक कौन है इसमें से, पॉपुलेशन रजिस्टर में कौन नागरिक है कौन नहीं नागरिक है, वो बात हो रही है ना। तो नागरिक तो हम सभी हैं। अब किसी के पास प्रमाण पत्र हिंदुस्तान जैसी जगह में नहीं होता, आगे आधे बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, स्पेशली जो बूढ़े हैं गरीब हैं, उनके पास कौन सा प्रमाण पत्र रहेगा। पहले तो मेरे अपने ही, मेरा कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अब मैंने कोई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कौन सा संभाल के रखा हुआ है इस उम्र में, समझिए। अब कहते हैं कि पिता माता कहाँ पैदा हुए थे, वो तो दोनों गुजर गए हैं, अब उनके पास उनको मैं कहाँ से पूछूंगी। पुराना उनका पासपोर्ट कहीं मिल जाए तो पता लग जाएगा कहाँ पैदा हुए थे, मुझे तो मालूम नहीं कि मेरी दादी या नानी कहाँ पैदा हुई थी, मुझे याद नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, और हम तो तब भी पढ़े लिखे हैं, गाँवों में कहाँ से ये प्रमाण पत्र लाएंगे, ये सिर्फ। और बाद में जो नहीं लाएंगे, असम में देखिए सीधा साधा बात है, असम में क्या हुआ, वहां तो ये एक्सरसाइज हो चुकी है ना
जी।
पहले तो कई साल लगे, 1200 करोड़ रुपए तो सरकार ने खर्चा, कहते हैं उतने ही ज्यादा पैसे या उससे ज्यादा पैसे लोगों ने खर्चे, कहीं इधर जाएं उधर जाएं, इसके पास जाएं, इस अफसर के पास जाएं, ट्रिब्यूनल के पास जाए, लॉयर्स लगाए लोगों ने।
जी नीना जी, माफ करिएगा, बहुत शुक्रिया आपका, चूंकि समय का थोड़ा अभाव है, इस जानकारी के लिए। उधर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज भी भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक एक मार्च निकाला गया। सुनिए दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट।
भारत सरकार ने आज राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाने और साल 2021 में जनगणना को मंजूरी दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि NPR यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर दोनों अलग अलग हैं और NPR की जानकारी का इस्तेमाल NRC में नहीं होगा।
देखिए दोनों में मूलभूत अंतर है। NPR जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है, देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, ना दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता। NPR के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी NRC के लिए नहीं हो सकता, दो कानून भी अलग।
इससे पहले आज भी नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में शामिल युवाओं से मैंने पूछा कि वो आज क्यों आए हैं।
मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ हजारों लोगों के साथ हमारी संविधान को असर्ट करने, ये कहने कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, हम सदा सेक्युलर कंट्री थे और हम रहेंगे, और मैं लोकशाही असर्ट करने आई हूँ यहाँ आज।
पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के धर्म, किसी के विश्वास के नाम पर उनको यहाँ की सिटीजनशिप दी जाएगी, उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी, और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। एंड दूसरा पॉइंट जो है NRC पे, NRC का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे देश में गरीब लोग हैं वो कहाँ से कागजात लाएंगे इतने।
वहीं स्वराज इंडिया के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव का कहना था कि सरकार NRC को लेकर भ्रम फैला रही है।
प्रधानमंत्री ने बिल्कुल नहीं कहा कि NRC नहीं आएगा, उन्होंने कहा है कि हमने अब तक चर्चा नहीं की है। पहली बात तो ये बात ही झूठ है। अगर राष्ट्रपति अपने फॉर्मल अभिभाषण में कहते हैं कि NRC आएगा, इसका मतलब है कि देश की कैबिनेट कह रही है, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति नहीं लिखते हैं, कैबिनेट लिखती है, तो ये तो बात ही झूठ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिए एक भाषण में कहा था कि NRC के मुद्दे पर लोगों को भड़काया जा रहा है और सरकार ने अभी तक NRC पर चर्चा नहीं की है। क्या ये सरकार के NRC पर पीछे हटने के संकेत हैं? इस प्रदर्शनकारी को ऐसा नहीं लगता।
सरकार ने अभी सिर्फ छलावा करने की कोशिश की और लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, ये कह के कि हमने NRC का जिक्र नहीं किया है या हमने डिटेंशन सेंटर्स नहीं बनाए, ये दोनों बातें झूठ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हट रहे हैं, मुझे बस ये लग रहा है कि वो जनता को थोड़ा बेवकूफ बना के किसी और तरीके से अपने साजिश को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
दिल्ली में निकले मार्च में मेरी मुलाकात अमरीका से आए एक सैलानी से भी हुई। इस सैलानी का कहना था कि अहिंसक प्रदर्शन लोकतंत्र का अहम हिस्सा है।
It's important to exercise rights and it's important to stand up against citizenship on the basis of religion. I think that it's important for citizens to exercise their right to protest in a non-violent and peaceful manner, and that's what this protest is.
वहीं जंतर मंतर पर लोगों को गले लगाती कुछ युवतियां भी मिली, जिनका कहना था कि इस देश में हिंदू, मुसलमान और सभी धर्मों के लोग एक साथ रहेंगे।
हम फ्री हग्स दे रहे हैं और यह हमारा तरीका है प्रोटेस्ट करने का, जहाँ पे हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन या अहिंसकवादी तरीकों से प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। हम लोगों के स्ट्रेस को भी कम कर रहे हैं साथ में, और ये कह रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं और किसी भी तरह का कोई डिवीजन नहीं लाया जा सकता इस सोसाइटी में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ एक दूसरे को हक करके ही रहेंगे।
नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर लोगों के मन में अभी भी कई तरह के भ्रम और आशंकाएं हैं।
ये थे दिलनवाज पाशा। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज मेरठ जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने जाने की इजाज़त नहीं दी। दरअसल पिछले शुक्रवार को मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस की गोली से कम 16 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि पुलिस ये दावा करती है कि पुलिस की गोली से प्रदर्शनकारी नहीं मारे गए थे। बहरहाल मेरठ में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार वालों से मिलने के लिए ये दोनों जा रहे थे, लेकिन उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना था।
माननीय सांसद राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का दौरा प्रस्तावित था। जैसे ही वो प्रतापपुर थाना क्षेत्र में आए तो प्रभारी निरीक्षक प्रतापपुर ने उन्हें ये बताया कि वर्तमान में मेरठ में पूर्णतः शांति है। यहाँ के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने धारा 144 लगा रखी है। इस पर धारा 144 के संज्ञान में लेते हुए वो लोग आपस में विचार विमर्श करने के उपरांत दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। वर्तमान में स्थिति सामान्य है।
ये थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मेरठ के प्रशांत कुमार। दरअसल शुक्रवार के दिन जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद बहुत सारे शहरों में लोगों का आरोप है कि पुलिस उनके घरों में घुस रही है, उन्हें मारपीट कर रही है, उनके जेवरात लूट रही है, उनके कैश लेकर जा रही है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया और उन्होंने ये रिपोर्ट दी।
मुजफ्फरनगर शहर के बिल्कुल मैं इस वक्त अंदर हूँ और ये मीनाक्षी चौक है इस तरफ और उससे जो लगी हुई गली है उसके अंदर। यहाँ शुक्रवार को जब हिंसा हुई तो उस वक्त यहाँ पर बहुत सारे रात में बहुत सारे लोग आए और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उनका ये कहना है कि पुलिस भी उसमें शामिल थी और यहाँ आकर तोड़ फोड़ किया घरों घरों में। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक 3 मंजिला इमारत है जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसमें तोड़फोड़ हुई है और अब ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि क्या डैमेज हुआ है। ये बताइए कि कितने लोग थे उस वक्त जो ये कर रहे थे?
200 आदमियों से भी ज़्यादा होंगे।
और ये कौन लोग थे? ये कौन से लोग थे?
टोप लगाए हुए थे जी बस, और नीचे 150 आदमी खड़े होंगे लाइन लगाए हुए, 150 आदमी लाइन लगाए हुए खड़े थे। वही टोप वाले भी थे और कुछ सादी ड्रेस वाले भी थे जैसे आम आदमी पहने हैं।
अच्छा, वो क्या कह रहे थे? तोड़ फोड़ जब हो रही थी तो क्या कह रहे थे?
बस मुझे तो उन्होंने जब ही चलता कर दिया। अब यहाँ 2 लौंडियर एक उनकी माँ 3 रह गए। बाद में मुझे यहाँ से चलता कर दिया उन्होंने इसे गाड़ी में बिठा के, और वहाँ जाके मेरे 2 डंडे मारे, मैं गिर गया सोफे पे। तो उसने कहा कि मारो ना इसे गाड़ी में बिठा के आओ, मुझे तो गाड़ी में भेज दिया। फिर तोड़ फोड़ करी उन्होंने यहाँ से।
महिलाएं भी हैं इस घर में हैं, आप लोगों से भी कुछ बात बात की? जो लोग आए थे तोड़ फोड़ कर रहे थे, कुछ कहा आप लोगों से?
उन्होंने आने के बाद यहाँ से तोड़ फोड़ की, उसके बाद मेरे जहेज का सामान तोड़ दिया सारा और 3.5 लाख रुपए के करीब ले गए, जेवर ले गए 20 तोले। फिर उसके बाद ऊपर जाने के बाद डोम तोड़ने लगे, वॉशिंग मशीन तोड़ने लगे। मैंने कहा अंकल ये क्या कर रहे हो? बोले कि तुम मत बोलो, चुप रहो तुम, जो तुम्हारा सामान है सब तोड़ दिया हमने, बाकी ये हमारा है घर, यहाँ से निकलो।
तो कई घरों में लोग यहाँ पर आए तोड़ फोड़ करने, और जैसे कि इस घर में भी मैं देख रहा हूँ कि तोड़ फोड़ हुई है। लोग घर के बाहर आने से डर रहे हैं, लोगों में दहशत है। और यहाँ पीछे जो है मीनाक्षी चौक है, तो मीनाक्षी चौक से लेकर यहाँ तक जितनी भी दुकानें हैं सील कर दी गई हैं। क्या कहा यहाँ पर जब सील किया? यहाँ 4 दुकानें मुझे
नहीं नहीं किसी कोई कोई मिला नहीं, रात में ये सील करके रात में चले गए, जिन्हें सामान ले जाना था वो सामान ले गए, ताले तोड़ दे, बाद में इन्होंने सील कर दी।
कितनी दुकानें सील हुई?
52 दुकानें हैं
सर। 52 दुकानें सील की गई है। अच्छा, तो ये सब दुकानें हिंदू मुस्लिम दोनों की हैं या?
नहीं नहीं सिर्फ मुसलमानों की हैं।
इस समय मैं सिटी एसपी के दफ्तर में हूँ, सतपाल अंतिल साहब के साथ दो चार सवाल हैं जो हम आपसे इनसे करना चाहेंगे। नमस्कार, हम लोग बीबीसी हिंदी से हैं। सतपाल साहब, ये बताइए कि कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं?
देखिए, अभी तक 48 पीपल हैव बीन अरेस्टेड।
और उनके खिलाफ चार्जेस क्या?
उनके खिलाफ राइटिंग के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, शांति व्यवस्था भंग करने के चार्जेस हैं।
कुछ अभी घरों में, हम उनकी गलियों में गए थे तो घर वगैरह जो हमने देखे उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह डैमेज थे। उनका ये कहना था कि प्लेन क्लोथ्स में थे, रात के वक्त ये हमले हुए तो उनको नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या है। कुछ लोग अवश्य ये ज़रूर कह रहे थे कि पुलिस के लोग इसमें शामिल थे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
देखिए, जो मीनाक्षी चौक है ये पूरा एपिसेंटर था। अलग अलग डायरेक्शन से लोग मीनाक्षी चौक पे इकट्ठे हुए थे। जब उनको वहाँ से खदेड़ा गया था तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में गए थे। काफ़ी लेट नाइट तक ये सब कुछ चलता रहा था। उसके बाद जो मॉब था वो अंदर की तरफ भी गया था, तो उस दौरान भी इस प्रकार की तोड़फोड़ हो सकती है। अगर जो हमें कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट अभी रिसीव नहीं हुई है कि अंदर किसी की तोड़फोड़ हुई है, अगर जो लोग कोई कंप्लेंट देते हैं हम उनकी जांच करेंगे, आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
उन गलियों में जिनका हमने जिक्र किया वहाँ पे थोड़ा खौफ का माहौल था?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल है, सारा बाज़ार पूरी तरह से खुला हुआ है। और उस एरिया में भी जिस एरिया की बात कर रहे हैं आप, मैं खुद वहाँ पे मीटिंग लेके आया हूँ और लोग बिल्कुल जो रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी है उसी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
तो ज़ुबैर अहमद सुना रहे थे आपको ये रिपोर्ट। और अब चलते हैं दक्षिण में, पुडुचेरी। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के दरमियान आए थे तो उन्हें उस प्रोग्राम में शामिल होने से रोका गया। मास कम्युनिकेशन की छात्रा रबीहा अब्दुल रहीम ने कहा कि पुलिस के एक अधिकारी ने उन्हें बाहर बुलाया और जब तक राष्ट्रपति वहाँ मौजूद थे पुलिस ने उन्हें अपने पास रोके रखा। सुनिए इमरान कुरैशी की ये रिपोर्ट।
रबीहा अब्दुल रहीम ने आरोप लगाया कि उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पहुंचने से पहले ही कॉन्वोकेशन हॉल से निकाल दिया गया। इसी के विरोध में उन्होंने गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया। रबीहा ने 2018 के मास कम्युनिकेशंस की परीक्षा में गोल्ड मेडल हासिल किया था। जब राष्ट्रपति कोविंद का कार्यक्रम खत्म हो गया तो रबीहा को फिर से अंदर जाने की इजाज़त दी गई। रबीहा अब्दुल रहीम ने बीबीसी से कहा कि उनके साथ भेदभाव किया गया। जब मैंने कहा कि हमारे साथ भेदभाव किया गया तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मुझे बाहर ले जाया गया। वहाँ हॉल में कई मुस्लिम महिलाएं भी थी, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ वही एक वजह नहीं था। एक और दुगना कारण ये भी है कि मैं CAA और NRC के खिलाफ मेरी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थी। उन्हें इसी बात का डर था कि मैं वहाँ विरोध प्रदर्शन करूँगी, तो इसीलिए मुझे वहाँ से बाहर बुलवाया गया। ये थे रबीहा अब्दुल रहीम के शब्द। राष्ट्रपति कोविंद के हाथ से सिर्फ 10 छात्रों ने गोल्ड मेडल लिया, जबकि करीब 100 से भी ज़्यादा छात्र गोल्ड मेडल जीतने वालों की सूची में थे। राष्ट्रपति के वहाँ से जाने के बाद दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट को विश्वविद्यालय के अधिकारी ने मेडलों को वितरित किया। रबीहा ने मंच पर गाया लेकिन स्पष्ट कर दिया कि वो गोल्ड मेडल को खारिज किस वजह से कर रही हैं और वापस आ गईं। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के पूर्व प्रोफेसर एस जनक राजन ने इस बर्ताव की आलोचना की है। इस तरह का बर्ताव करना किसी के भी साथ ठीक नहीं है। यह विश्वविद्यालय को मन प्रकाश में डाल देता है। दरअसल इस मामले में शिष्टाचार की सख्त जरूरत है। बेकार का इस मामले को बड़ा कर दिया गया है। ये थे प्रोफेसर एस जनक राजन के शब्द। रबीहा का कहना था कि अगर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता तो वो गोल्ड मेडल को खारिज नहीं करती। उनका कहना था भेदभाव की वजह से ही उन्हें ये कहने की हिम्मत आई कि वो CAA और NRC का विरोध करती हैं। पुडुचेरी में CAA और NRC के खिलाफ छात्रों और दूसरे नागरिकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किए। इमरान कुरैशी, BBC, बेंगलुरु।
पुडुचेरी के बाद अब चलते हैं पूर्वोत्तर के एक राज्य, पूर्वी भारत के एक राज्य झारखंड में। झारखंड में जो नई सरकार हेमंत सोरेन की सरकार बनने वाली है उसको बाबूलाल मारांडी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मारांडी ने समर्थन का आश्वासन दिलाया है। दरअसल हेमंत सोरेन आज बाबूलाल मारांडी से मिलने गए थे। मुलाकात के बाद मारांडी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा,
निश्चित रूप से हमारी पार्टी का पूरा समर्थन श्री हेमंत सोरेन जी को रहेगा और इनको लिखित में भी हम लोग पहुंचा देंगे। बिना शर्त समर्थन की मैं बात कर रहा हूं, कोई शर्त की नहीं होती है समर्थन की। सरकार में शामिल होने का कोई शर्त हमारे पास नहीं है। हम सीधा सीधा, क्योंकि इनको पर्याप्त बहुमत है और जब कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके अधिकार क्षेत्र में होता है वो जिन लोगों को ले।
ये थे बाबूलाल मारंडी और इस वक्त चलते हैं रांची, जहां रवि प्रकाश टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। रवि, बताएं ताजा क्या जानकारी है आपके पास इस वक्त?
जी, हेमंत सोरेन जो महागठबंधन के नेता हैं, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने अपने विधायक दल का नेता भी चुन लिया है और अब से थोड़ी देर के बाद मतलब रात के 8 बजे वे राज्यपाल से मिलने जाएंगे और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक चल रही है अभी और इस बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक एक साथ कहां पर बैठेंगे। यह बैठक आज रात को होगी या कल सुबह होगी, ये इसके बाद ही इसका फैसला होगा। उस बैठक में भी हेमंत सोरेन को औपचारिक तौर पर महागठबंधन के जो दल है उनके उनका नेता चुना जाएगा और इसके बाद यह तय किया जाएगा कि सरकार किस दिन शपथ लेगी। ऐसी चर्चा है रांची में और जो पार्टी से जुड़े लोग हैं वो ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि शायद 27 तारीख को, क्योंकि 25 को क्रिसमस है और यहाँ पे ईसाइयों की बड़ी आबादी है जो आदिवासी ईसाई हैं, तो इस वजह से 27 तारीख को संभवतः नई सरकार शपथ ले और यह खुले मैदान में मतलब जो मोराबादी का ग्राउंड है रांची का उसमें यह शपथ ग्रहण समारोह हो जिसमें कई लोगों को बुलाया जाए। जी
रवि, आपको इस जानकारी के लिए। और अब चलते हैं अमेरिका की तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी सुस्ती के दौर में है, सरकार को तुरंत नीतिगत कदम उठाने की जरूरत है। IMF ने सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत के आर्थिक विकास में तेजी आने से लाखों लोग गरीबी से बाहर आए, लेकिन इस साल की पहली छमाही में कुछ वजहों से इकोनॉमिक ग्रोथ कमजोर रही है। BBC के वॉशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंट विनीत खरे इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। विनीत, और क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में?
इकबाल, ज्यादातर आपने बातें बताई दी हैं, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि पिछले कुछ वक्त से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उस पर बात की है IMF ने, जो जॉब ग्रोथ है उसमें उसमें समस्या है उस पर बात की है, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो समस्या है और उसके अलावा जो पूरा जो भारत की अर्थव्यवस्था पर जो असर दिख रहा है कि एक वक्त जो एक जमाना था कि भारत की चर्चा होती थी विश्व पटल पर कि एक राइजिंग इकोनॉमिक सुपर पावर है, चाहे डावोस हो चाहे दुनिया के अलग अलग कोने में जो बात होती थी, आज स्थिति टोटली डिफरेंट दिखती है। आपको याद होगा कि गीता गोपीनाथ जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट, उन्होंने हाल में ही कहा था कि जिस तेजी से भारत में जो स्लो डाउन आया है उससे एक तरह से सरप्राइज है और जो एस्टिमेट थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ेगी उसमें भी डाउनग्रेड हुआ है। तो ये, और उन्होंने ये भी कहा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने जो पॉलिसी रेट है उसमें और कटौती कर सकता है, या हालांकि जो लेंडिंग रेट है उसको 4 से 5 बार उसको उसमें कमी भी की गई है, लेकिन क्या कुछ किया जाए कि अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था वापस ऑन ट्रैक आए उस पर बात की है IMF ने। लेकिन बड़ी कहानी यही है कि आजकल आप वॉशिंगटन के अखबारों में देखिए तो NRC या फिर NPR या फिर इंटरनेट शटडाउन, कश्मीर, इस पर लेकर चर्चा होती है, लेकिन जो नैरेटिव जो पहले था वो बदल गया है।
जी, बहुत शुक्रिया विनीत आपका। और अब चलते चलते प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि NRP और NRC में कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को NRP यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दी है। इस बीच विवादित नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं ने क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए साथ मिलकर काम करने का वादा किया है। सीरिया से आ रही खबरों के मुताबिक विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब प्रांत में ताज़ा हमलों में 5 बच्चों समेत कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। जापान में जन्म की दर रिकॉर्ड स्तर पर कम हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जापान में इस साल करीब 8,60,000 बच्चों का जन्म हुआ, यानी पिछले 100 साल में वहाँ सबसे कम बच्चे पैदा हुए हैं। BBC समाचार।
तो दिनभर की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली रविशंकर कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।